पेज 36। अब आपको पता चलेगा नई दिल्ली के रास्ते कैसे हैं। विश्व में ऐसे बहुत कम शहर हैं जहां पर रास्ते के बीच में वृक्षों और फूलों से भरे सुंदर गोल चक्कर हैं। यहां प्रत्येक बंगले के प्रांगण में बाग है, जिसे देखकर यहां आने वाले यात्री नई दिल्ली को बागों का शहर कहते हैं। शाहजहानाबाद की सबसे रोचक जगह उसकी गलियां हैं और नई दिल्ली की सबसे सुंदर जगह उसके रास्ते हैं। याद रखें कि राजधानी केवल सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक प्रयोग के लिए थी। इसके बाद वॉइसरॉय, सभी अधिकारी और उनके परिवार कालका मेल गाड़ी में चढ़ते और शिमला पहुंच जाते, जहां वे अक्टूबर तक रहते थे। पेज 37। नई दिल्ली के रास्ते सर्दियों में सबसे सुंदर लगते हैं। वर्ष 1930 से 1940 के बीच बहुत कम कारें थी। लोग घोड़ा गाड़ियों और टांगों का प्रयोग करते थे। बहुत से लोग घुड़सवारी का आनंद भी लेते थे। दुपहिये और तिपहिये स्कूटर नहीं थे। राजधानी क्षेत्र में किसी सार्वजनिक बस, ट्रक या ट्राम का आना मना था, इसलिए यातायात सीमित, धीमा और प्रदूषण रहित था। इन स्थानों पर टहलना अच्छा लगता था। पैदल यात्रियों के लिए यहाँ चौड़े चौड़े पैदल पथ थे। मकानों की दीवारें नीची थी और पेड़ की ऊंची ऊंची बाड़ें थी। पैदल पथ के साथ साथ वृक्ष थे। लुटेरेंस केवल वास्तुकार ही नहीं थे, उन्हें वृक्षों और फलों की भी अच्छी जानकारी थी। उन्हें वे अपनी पसंद से और ध्यान पूर्वक चुनते थे। वे जानते थे कि गर्मियों में दिल्ली बहुत गर्म होगी, इसलिए उन्होंने ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों को चुना। उन्होंने अर्जुन, अंजीर और इमली के पेड़ लगवाए। पेज 38। किंग्सवे, राजपथ के समतल मैदानों के किनारे उन्होंने जामुन के छायादार पेड़ लगवाए, जो हमें मानसून ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में स्वादिष्ट फल देते हैं। लुटियंस ने देखा कि दिल्ली में पहले के राजाओं ने हवा में ठंडक लाने के लिए नहरें बनवाए थे, इसलिए उन्होंने राजपथ पर फवारों और पानी के नाले बनवाए। इंडिया गेट के पास कैनोपी के चारों तरफ उथले पानी के ताल का डिजाइन बनाया। पुराना किले के चारों तरफ एक तालाब बनाना चाहते थे। अब भी वहां छोटा तालाब है जिसमें किश्ती का आनंद लिया जा सकता है, जिसमें किले की परछाई दिखाई दे। पेज 39।